يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحثیں کرتے ہو؟ اصل میں اس کا شان نزول کیا ہے کہ جب یہ نجران کا وفد آیا ہوا تھا نا کرسچنز کا، اس وقت یہودی بھی تو مدینہ میں ہی رہتے تھے، وہ بھی آ گئے، وہ آ گئے، ان کو پتا چلا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو وہ آ گئے، اور یہاں پہ بحث شروع ہو گئی. وہ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اس کی بحث ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. دونوں کھینچا تانی کرنے لگے، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئے کتاب؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ، تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے 1000 ایئرس بعد تورات اتری، اور انجیل تو 3000 ایئرس کے بعد اتری. تو تم کدھر سے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی؟ موسیٰ علیہ السلام تو ان کی اولاد سے تھے، بہت بعد میں آئے، ان کے بعد پھر یہ یہودیت شروع ہوئی، عیسائیت بھی بعد میں شروع ہوئی. تو کدھر سے جا کے تم نے ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا کہ وہ یہودی تھے یا وہ کہہ رہے ہیں عیسائی تھے؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ سیم از ود اس. آج کہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیا ہیں؟ حنفی ہیں، شافی ہیں؟ نہیں نہیں پہلے آپ یہ بتائیں. اگر کہہ دیں مسلمان ہے صرف، نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر کہہ دیں کہ صحابہ پھر کیا تھے، تابعین کیا تھے، تو وہ نہیں ان کو سیٹسفائی کرتا. امام ابو حنیفہ خود کیا تھے؟ امام شافعی خود کیا تھے؟ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، یا وہ بھی اپنے آپ کو حنفی یا شافعی کہلاتے تھے؟ لیکن دیکھیں، کسی مذہب کو فالو کرنا، مذہب سے مطلب یہ ہے کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، یا فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، یا فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں، فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، کسی کو بھی فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مگر اس میں اتنی شدت اختیار کر لینا کہ بس اگر حنفی ہیں آپ تو بس ٹھیک ہے، اگر آپ حنفی نہیں ہیں تو بس آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو جیسے کہ کافر ہی ہو گئے، اگر آپ شافعی ہیں تو بس تب آپ ٹھیک ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یہ بتائیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے پھر؟ ان کے بعد جو صحابہ تھے وہ کیا تھے؟ ان کا ایمان نہیں قبول؟ نعوذ باللہ، کچھ تو تھے نا، وہ مسلمان تھے. لیکن آج ہمارے لیے صرف مسلمان کا ورڈ ہونا ہمارے لیے کافی ہی نہیں ہے، جب تک ہم کسی کے ساتھ اپنے آپ کو نہ اٹیچ کر لیں اور اس کے نام سے پہچانے نہ جائیں، اور پھر اس میں اتنی شدت نہ اختیار کر لیں کہ بس اف حرف آخر بس یہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں. بھائی امام ابو حنیفہ تو خود فرمایا کہ میری بات کے آگے تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مار مانا. پھر بھی نہیں سمجھ آتے، تو وہ ان کے بھی یہی مسئلے تھے. اور لیکن دیکھیں، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دونوں اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑا آنر دیا کہ ان کے ساتھ اٹیچ، ان کو اپنے کرنا کو بھی لوگ آنر سمجھتے ہیں، کہ یہودی وہ کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اور عیسائی بھی کہتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں سے بلانگ کرتے تھے. وہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو سارے ہی مانتے ہیں. ہا انتم ہا اولائی ہا ججتم فیما لکم بھی علم، کیا تم وہ لوگ ہو جو بحثیں کرتے ہو اس معاملے میں جس میں تمہیں علم ہے؟ فلیما تو ہا جونا فیما لیسا لکم بھی علم. اس دیکھو، تم اس میں تو بحث کرتے ہو، سمجھ آتی ہے بحث کرتے ہو، جو کوئی تمہاری جو کتاب کے کوئی معاملات ہیں، کوئی تمہارے دین کے معاملات ہیں، اس میں تو تم جھگڑتے ہو، لیکن عقل تو کرو، اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے؟ جس میں کوئی علم ہے اس میں جھگڑتے پھر بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے، جس میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے اس میں جھگڑ رہے، اور کس چیز کا علم نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کس کو بلانگ کرتے تھے؟ دین ابراہیمی کیا تھا؟ تمہیں کچھ نہیں پتا ہے، پھر بھی تم اس میں جھگڑ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں بہت اچھی طرح جانتے تھے. فیما لکم بھی علم میں وہ آتی ہیں، اور بھی ان کے جو دین کے معاملات تھے ان میں جھگڑتے تھے، ان کو علم تھا ان کا، اس میں جھگڑتے تھے. تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر جھگڑ ہے. تمہاری کتابوں میں کوئی چیز ہے اس کے اندر تم جھگڑا کر، لیکن جس کا تمہیں کوئی سر پیر کا بھی نہیں پتا، ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی اتنا عرصہ ہو گیا، ان کے تو صحیفے بھی موجود نہیں کہ جن کو پڑھ پڑھ کے ان کو پتا چل گیا ہو کوئی، تو پھر اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ इसका मतलब है जिस चीज के बारे में इल्म ना हो नहीं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आज आप देखें मुसलमानों का क्या हाल है। अल्लाह अकबर, यकीन जाने हर बंदा खुद को सबसे बड़ा आलिम दीन समझता है। इसीलिए हर मजलिस में बैठ के लोग इतने आराम से कह रहे थे, हाँ हाँ जी कुरान में तो ये लिखा है, हदीस में तो ऐसा है, नहीं जी हमारा दीन तो ये नहीं कहता। एक जगह मैंने अब देखे ना, जब नहीं इल्म होता, अब उन ऐसे लोगों से पूछे ना कि उन्होंने कुरान कितना पढ़ा है, उन्होंने हदीस पे उनको कितना उबूर है, उनकी दीन कितनी समझ है दीन की, तो कोरे होंगे बिल्कुल। लेकिन बातें ऐसे करना कि जैसे सारा कुछ इनको ही पता है। तो एक जगह पे मैंने अपने कानों से ही बात सुनी, अल्लाह अकबर, कि कुछ खवातीन ये बात कर रही थी। एक ने कहा, देखें हिजाब जो है ना, हिजाब जो है ये फर्ज नहीं है। क्यों नहीं फर्ज? उसने कहा, उन्होंने कहा इसलिए कि देखो फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अगर हिजाब फर्ज होता तो इनमें ना होता। अल्लाह की बड़ी, मतलब कोई कॉमन सेंस, कोई अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इसी फरमाया, अफला तअक्लून, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, वो समझ नहीं, वो उनमें तो ये भी नहीं है कि सच बोला करो, उनमें तो ये भी नहीं है कि सूद ना खाओ, उनमें तो ये भी नहीं कि बेईमानी ना करो, तो क्या सारी चीजें सही हो गई? उनमें तो ये भी नहीं कि जुल्म ना करो, तो जुल्म भी सही हो गया। हाँ? तो देखो जरा कि हम किन चीजों में बहस करते हैं। एक ने कहा बेचारी खवातीन पता नहीं होता उनको, तो उन्होंने कहीं से तो कुछ जस्टिफिकेशन लानी ना, उन्होंने कहा कि मैंने तो कुरान में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ईमान वाली जो औरतें हैं ना उनके लिए है हिजाब, तो हम कौन से ईमान वाली है, हमारा तो ईमान ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब ये देखें कि फलीमा तो हाजुना फीमा लई सला कुंभी, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है तुम उस पर क्यों बहसे करते हो, क्यों उसके ऊपर झगड़ते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है, तुम फिर बहसे लेके बैठे हुए उनकी, और हर कोई कह रहा है जी मैं वो हम में से थे। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, ये बात समझ आ जाए ना तो और क्या चाहिए हमें, इतनी सी बात समझ लो सारी बातों के हमारे ना मसले ही खत्म हो जाए। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, याद क्यों नहीं कर लेते ये? अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जब किसी चीज को समझ ना आए ना तो क्या करो, अल्लाह जानता है मैं नहीं जानती। जब कोई फैसला अल्लाह का पसंद ना आए ना, मेरे साथ ये क्यों हो गया, तो कहो अल्लाह जानता है मैं नहीं जानती। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला, अल्लाह मुझे कहता है तुम नहीं जानते तो मैं नहीं जानती, मान लो ना मैं नहीं जानती। ये मानना बड़ा मुश्किल होता है ना, मैं ही तो सब कुछ जानती, मैं जो ये बेहतर लगता है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो गया, अफ्रीका में बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं, फलां हैंडीकैप क्यों पैदा हुआ है, अल्लाह ने उसके साथ क्यों ऐसा कर दिया, वो तो छोटी बच्ची थी वो क्यों मर गई, उसका क्या कसूर था। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, हाँ ये चीज इंसान को झुका देती है ना, वो झुकना तो चाहता नहीं है, उसको अपनी अकल सबसे बड़ी लगती है। मुझे तो वैसे इसके अंदर कुछ समझ नहीं आती, मुझे तो नहीं समझ आती कि वो तो बच्चे हैं उनका क्या कसूर था, मुझे तो नहीं समझ आती उसको ये बीमारी क्यों लग गई, उसने ऐसा क्या किया था। तुम्हें इसलिए नहीं समझ आती कि तुम्हें नहीं समझ, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है, अल्लाह को इल्म है। तो झुक जाओ अल्लाह के आगे, उसके इल्म के आगे, वो अल अलीम है, कोई क्यों नहीं झुकते, उसी की ये सिफत है ना, क्यों नहीं उसकी सिफत के आगे सरेंडर कर देते। देखिए मुस्लिम है ना, यहाँ पे कह दो कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम सिर्फ मुंह से बोलने की बात नहीं होती, सबमिशन कहाँ से होती है, सबमिशन जाहिरी भी होती है और बातनी भी होती है। जाहिरी सबमिशन क्या है कि आप अल्लाह ताला की जो जो भी बात है उसके आगे आप झुक गए, जाहिरी तौर पे आपने अपने आप को सज्दे में डाल दिया, रुकू में डाल दिया। अंदर से बातनी सबमिशन क्या है, क्या आपने मान लिया, आपने अपनी विल को, अपनी अना को झुका दिया, आपने कहा कि हाँ जो अल्लाह ने कहा है वो ही सही है, क्योंकि उसको इल्म है मुझे नहीं इल्म, ये भी सबमिशन है। तुम आगे फिजिकली जाहिरी तौर पे सज्दे करते रहे, और अंदर जो मानना ही ना हुआ, अंदर ने सबमिट किया नहीं हुआ, अब जाहिर में सबमिट करते जा रहे, मुस्लिम तो ना हुए फिर। मुस्लिम वो है अंदर बाहर दोनों से सबमिट किया हो, उसकी अकल ने सबमिट कर दिया हो कि मेरी अकल कुछ नहीं है, अल्लाह ही है सब इल्म रखने वाला, मुझे क्या पता है मैं क्या चीज हूं, ये रवैया होना चाहिए। समझ आई? तो हम में से कितनों का ये रवैया होता है, कितने लोग कह देते हैं वल्लाहु यालम हो, अल्लाह जानता है, और कितने लोग उसके बाद कहते हैं मैं नहीं जानती। जरूरी है कि जो भी चीज अल्लाह ताला के पास हिकमत की हो वो मैं और आप जरूर जाने, ये जरूरी है कि अल्लाह हमें बता के फिर वो फैसला करे, देखो इसके अंदर ये हिकमत है, फिर हम कन्विंस हो जाए तो फिर वो एग्जीक्यूट करे अपने फैसले। तो अल्लाह क्या नाउज बिला हमसे पूछने लगे पहले, हमें हिकमतें बता के सेटिस्फाई करने लगे तो फिर वो करे कोई काम? कैसी बातें करते हो, हमारी आफियत इसी में हम कह दें अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता, जो भी हिकमत होगी मुझे नहीं पता, जरूरी मैं खोज के निकालू हिकमतें, समझ आ जाती है ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं, मुझे बस ये यकीन है इसमें हिकमत है, बस बात खत्म हो गई। अब नहीं अगर समझ आ रही तो उसके पर बेचैन रहना, देखिए क्या हिकमत होगी इसके अंदर, मेरी तो समझ में नहीं आती, तो क्या समझ है आपकी, क्या चीज हूं मैं और आप? तो याद रखें वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालम, कितनी दफा कुरान में ये आ चुका है, फिर भी हमारे जो इल्म का तकब्बुर है ना वो नीचे नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमाता है उसको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। माँ काना, अब बता दिया क्या थे, माँ काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियम, ना तो वो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमन, वो भी मुस्लिम ही थे, लेकिन कैसे मुस्लिम थे, वो हनीफ थे, हनीफ नाम भी रखते हैं। और कुरान पाक में ना जगह जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही तारुफ कराया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखें दुनिया में आके तो अपने आप को नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो ना यहूदी था ना नसरानी था, तुम लोगों ने क्या बना के रख दिया मुझे, वो तो नहीं कह सकते ना, लेकिन अल्लाह ताला तो है ना जो हय और कयूम है, हजारों साल गुजर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए भी हजारों साल गुजर गए, उसके बाद अल्लाह ताला इस कुरान में बता रहा है, गवाही दे रहा है, उनकी बरात फरमा रहा है, ना तो वो ये शिर्क करने वाले थे जो ईसाइयों ने शुरू किया हुआ, ना वो ये यहूदियों वाला शिर्क करते थे, वो तो हनीफ थे और मुस्लिम थे। हनीफ कौन होता है, हनीफ वो जो डेडिकेटेड हो, जो फोकस्ड हो, जिसको कोई चीजें डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो इंक्लाइंड हो एक तरफ, झुका हुआ हो एक तरफ, वो किस तरफ उनका झुकाव था, अल्लाह की तरफ, देखे ना अल्लाह की तरफ उनकी इतनी डेडिकेशन थी, इतने फोकस थे, सारा कुछ छोड़ दिया एक अल्लाह के लिए, सारा कुछ छोड़ दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने कुर्बानियां दी। और मुस्लिम थे वो तो अल्लाह के फरमा बरदार थे, इत्काला लहू रब्बू अस्लिम काला अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, वो तो इतने खूबसूरत शख्सियत थे कि अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया आप झुक जाए, आप मुती फरमा बरदार हो जाए, अस्लिम, तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम ले आया, मैं मुती हो गया, आई सबमिटेड, वो तो ऐसे थे, तो तुम तो बात ही नहीं सुन रहे हो, तुम तो शिर्क करने लगे हुए हो। वा मा काना मिनल मुशरिकीन, वो तो मुशरिकों में से ही नहीं थे, बल्कि वो तो शिर्क से इतने बेजार थे, इस कदर उनको शिर्क से नफरत थी कि देखें उन्होंने जब ये आके घर बनाया भी अल्लाह का, तो उन्होंने उनकी दुआएं यही थी, हम सूरह बकरा में पढ़ चुके, अल्लाह शिर्क से मेरी औलाद को बचाना। एक हमें क्या बात पता चली कि दुआएं बड़ों की कैसी होती थी, जो बड़े लोग थे उनकी दुआएं, हमने पहले एक दुआ भी पढ़ी है जो हन्ना की थी, हजरत मरियम की वालिदा की थी, उसी दुआ से अगर हमने उस वक्त नहीं भी मांगी अपने बच्चों के लिए जिस वक्त वो पैदा हुआ हमें पता ही नहीं था, आज मांग लें, आज कहें या अल्लाह मेरी औलाद को और इनकी नस्लों को आगे शैतान मरदूद से अपनी हिफाजत में रखना, अपनी पनाह में रखना, इसी तरह शिर्क से अल्लाह मेरी औलाद को बचा के रखना। तो उन्होंने अपनी औलाद को लाके इधर बसाया था, ये शिर्क से महफूज रहे, इतनी उनको नफरत थी शिर्क से, उन्हें तो वो तो बुत शिकन थे, बुतों को तोड़ देने वाले थे। हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े हुए फिर उसके बाद, उन्होंने तो आग में डालने का फैसला कर लिया उनको, लेकिन परवाह नहीं की उन्होंने। तो अब तुम कहते हो ना कि इब्राहिम हमारे थे, और वो कहते हैं इब्राहिम हमारे थे, तो पता है इब्राहिम किसके थे? इन औला الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो क्लोजेस्ट कौन थे? للذين اتبعوه, वो जिन्होंने उनकी पैरवी की, उनके जमाने में जो उनको फॉलो करने वाले थे वो उनके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थे। और वहादन नबी, और ये नबी सबसे ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक रोल मॉडल बनाया, रोल मॉडल बनाया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर नबी के लिए नबियों में से कोई दोस्त होता है, ठीक है, हर नबी के लिए कोई दोस्त होता है, और मेरे लिए कौन है? तो फरमाया कि मेरे वली दोस्त अंबिया में से मेरे बाप और अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई, ठीक है। तो ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तिलावत फरमाई कि मेरे जो यानी मेरे वली दोस्त, वैसे तो सारे अंबिया एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन क्लोजेस्ट में किससे हूँ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इसलिए आप देखें दुरूद शरीफ में भी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, हालांकि और बहुत सारे पैगंबर हैं। और वल्लदीन आमन, और वो लोग जो ईमान लाए, किन पे ईमान लाए? जो इस नबी पे ईमान लाए, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्लोजेस्ट हैं। और सबसे पहले उनमें सहाबा कराम हो गए, क्योंकि ये नबी भी शिर्क से बेजार है और इनके मानने वाले भी शिर्क से बेजार है। तो तुम क्या कहते हो, तुम इनसे क्लोजेस्ट हो, तो तुम कैसे इनसे क्लोजेस्ट हो गए? इत्तेबा इंसान को क्लोज करता है, सिर्फ ये नस्ली तौर पे होना कि हम उनकी औलाद में से हैं, क्योंकि आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनसे आगे फिर बनी इसराइल हुए, तो वो समझते कि हम बनी इसराइल में यहूदी भी हैं और ईसाई भी हैं। तो नस्ली तौर पे किसी के साथ निस्बत हो जाना, ये आपको, ये कोई विरासत थोड़ी है कि इससे आप दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। हम उनके वारिस हैं, तो इसलिए हम नस्ल के होने से नहीं होता, सहाबा कराम में उनकी नस्ल में से नहीं होंगे, लेकिन वो उनसे किस तरह क्लोजेस्ट हैं? इसलिए कि उनका इत्तेबा करने वाले। तो इससे पता चला कि इत्तेबा कितना जरूरी है। हालांकि सहाबा तो हजारों साल बाद आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हजारों साल बाद आए। आप किसी से क्लोज होना चाहते हैं ना, उसका इत्तेबा करें। जैसे हमें दिल करता है जब हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हाय काश हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में होते, काश मैं उस वक्त पैदा हो जाती। तो नहीं पैदा हुई कोई मसला नहीं, अब उसमें कुछ कोई आप रिवर्स नहीं कुछ कर सकते, आपकी अपनी मर्जी नहीं है आपके पैदा होने में, लेकिन कैसे मैं क्लोज हो सकती हूँ? उनका इत्तेबा करके। आपको जो पसंद है, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम पसंद है, उनकी तो जिंदगी का हमें जो चीजें कुरान पाक से पता चलती हैं वही हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी की एक एक बात, एक एक अदा, एक एक उठना बैठना, एक एक मुस्कुराना, एक एक घर में कैसे थे, बाहर कैसे थे, आदात उनका, उनकी हर बात जो है ना रिकॉर्डेड है। तो आप आसानी से इत्तेबा कर सकते हैं। और हमने पहले क्या बात पढ़ी थी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। और अगर तुम भी मोहब्बत का दावा करते हो अल्लाह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा करो। तो इत्तेबा करने से ना ये टाइम की जो दूरियां, जमानों की दूरियां, ये स्क्वीज हो जाती हैं, ये खत्म हो जाती हैं। आप किसी से क्लोज होना चाहते हैं, आप समझते हैं हमें उस जमाने में होती, उससे जरूरी नहीं आप क्लोज होते। देखिए उस जमाने में तो अबू लहब भी था, अबू जहल भी था, तो वो क्लोज तो नहीं हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, करीब तो नहीं हुए, हालांकि वो वहीं रहते थे, उसी बस्ती के थे। लेकिन बाद में कई आने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो सकते हैं उनका इत्तेबा करके। तो ये एक नुस्खा है जो आपको दिया जा रहा है कि हर वक्त यही रोने ना रोते रहो कि मैं क्यों नहीं पैदा हुई उस वक्त, आए कैसा होता मैं उस वक्त होती, बल्कि उनका इत्तेबा करो ताकि फिर कयामत के दिन उनसे करीब हो, इससे आपकी कुर्बत हो जाएगी। तो आपकी जो महबूब हस्ती है उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना, ये आपको उनसे करीब कर देगा। इसी तरह ये भी हमें पता चला कि वल्लाहु वली जुल मोमिनीन, सारे ईमान वालों का अल्लाह वली, जितने अल्लाह वली उल्लदीना आमनु, ये पहले भी हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह वली है ईमान वालों का। तो ईमान वाले जो सच्चा ईमान रखता होगा, अल्लाह ताला उसका दोस्त है, उसके करीब है। तबरानी में हदीस आती है, ये नुस्खा है अल्लाह ताला की विलायत पाने का, अल्लाह की दोस्ती पाने का। सुने इस नुस्खे को, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए बुग्ज रखे, अल्लाह के लिए दोस्ती करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, वो अल्लाह की विलायत पा जाएगा। समझ आई? अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी। किसी के साथ मेरा वैसे कोई बैर नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए दुश्मनी है कि वो अल्लाह ताला के ऊपर बुरी बातें करता है, वो मुसलमानों को टॉर्चर करता है क्योंकि वो एक अल्लाह को मानते हैं, तो मुझे उससे बोझ है। मुझे किसी से मोहब्बत क्यों है कि वो इस्लाम का हामी है, वो मुसलमानों के साथ अच्छा है, ये अल्लाह की खातिर मोहब्बत है। किसी से दोस्ती क्यों है, क्योंकि ये मुझे अल्लाह से करीब करता है, मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है। और किसी से दुश्मनी क्यों है, उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मेरे साथ उसके जायदादों के कोई झगड़े नहीं है, लेकिन उसके साथ मेरा बोझ क्यों है? बोझ इसलिए कि जब वो अल्लाह की रिस्पेक्ट ना करे तो मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे वो इसलिए बुरा लगता है। वो मेरे नबी के ऊपर कोई बात करता है, मेरे दीन के ऊपर कोई बात करता है, वो इसलिए बुरा लगता है। तो ये दीनी गैरत जो है ना, जब तक इंसान के अंदर ना आए वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। हम दोस्तियां क्यों करते हैं, यहाँ से कोई फायदे मिलने हैं, वो चाहे अल्लाह के कितने भी नाफरमान हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे फायदे तो मिलते हैं, ये हमारे बिजनेस पार्टनर है, इनके साथ इसलिए करते हैं कि यहाँ पे इनकी पोस्ट बहुत बड़ी है तो इनके साथ कॉन्टेक्ट बनाने हैं, इसलिए इनके साथ दोस्तियां रखी हैं। इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं, क्योंकि ये बड़े मॉडर्न है। तो ये अगर मेयार है तो फिर तो कोई, फिर कैसे अल्लाह के वली बनेंगे? दोस्ती वहां पे करनी है जो अल्लाह के करीब ले जाने वाला हो। किसी से दूरी कब करनी है? जो अल्लाह से दूर है उससे आप भी दूर हो जाए, उससे करीब हो जो अल्लाह से करीब है, उससे मोहब्बत करें जो अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाए। देखिए ये तो वैसे बताने की बातें भी नहीं है, जब मोहब्बतें होती हैं ना किसी से तो ये खुद ही समझ आ जाती है बातें, ठीक है ना। وَدَّتْطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, بہت زیادہ شدید خواہش ہے اہل کتاب کی, لَوْ يُدِلُّونَكُمْ, کہ وہ کاش تم وہ گمراہ کر سکیں تم. وہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں سیدھے راستے پر ہے, وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں چوزن من ہو گئے, وہ چاہتے ہیں تمہیں بھی بھٹکا دیں. وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو, اور ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا, وہ کسی اور کو نہیں گمراہ کر رہے, وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے, خاص طور پہ یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر انتہائی حسد کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ بس یہ ہمارے دین میں نہیں آئیں, یہ نہیں ان کی تھی کہ ہمارے دین میں آ جائیں, بس یہ اپنے دین پہ بھی نہ رہیں, کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگوں کی ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کنورٹ کر کے اپنی طرف لے جائیں, وہ کہتے ہیں بس اسلام کو نہ یہ فالو کریں, اس سے ہٹ جائیں, اس کو چھوڑ دیں. یہی اس کی چاہت کہ یہ ان کی شدید خواہش ہے, اور اس کے لیے وہ پھر کچھ سازشیں بھی کرتے تھے, مکر و فریب کے جال بھی بچھاتے تھے, اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو کام وہ یہ کر رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی فرق نہیں پڑا, آپ کا کام تو آپ کا مشن تو چلتا رہا, ان کا تو یہ تھا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو آپ سے دور کر دیں اور اس کے ذریعے آپ کو اکیلا کر دیں, یہ مشن ناکام ہو جائے, اور ان کی
ये जो इमामत उनसे छिन गई थी वो अब मुसलमानों के पास भी ना रहे। अब इसके ऊपर यहां पर हमें बता दिया गया कि जो किसी के लिए घड़ा खोदता है ना वो अपना खुद नुकसान करता है। जो किसी को भटकाना चाहता है ना वो दूसरे को नहीं भटका रहा होता, वो अपने लिए एक तबाही का गड़ा खोद रहा होता है। वो कहते हैं ना, वो मुहावरा भी है ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है, वो खुद ही गुमराह हो गए। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना फर्क पड़ा, ना आपके को मिशन को फर्क पड़ा, और इनका क्या हुआ? इसी तरह कई लोग दूसरों को वैसे ही भटकाना चाहते हैं, किसी के खिलाफ करना चाहते हैं, उनके वालदैन के या उनके घर वालों के, तो वो किसी का नहीं बुरा करते। अल्लाह ताला वो कहते ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अल्लाह उनके लिए जो दूसरे के लिए गड़ा खोद रहे होते हैं वो उनके लिए अल्लाह ताला तबाही का सामान कर देता है। या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयात का, अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो? इसमें कुरान की भी बात आ गई कि कुरान की आयात को क्यों तुम सिर्फ अपने हसद की वजह से, इसकी वजह से इनकार करते हो, तो तुम क्यों ऐसे करते हो? वह अंतुम तशहदून, जबकि तुम गवाह हो। ये तो देखें इनकी गवाही कैसी थी, इनकी गवाही ये थी कि ये लोग अकेले में मानते थे इस बात को कि ये सच्चे रसूल हैं, फिर भी इनकार करते थे, इनके दिल गवाही देते थे, और अल्लाह तो जानता था ना इनकी बातों को भी और इनके दिलों को भी, तो अंदर से इनको पता था फिर भी इनकार कर रहे हैं। तो लिमा तकफुरूना भी आया तिला, दूसरा माना लिमा तकफुरूना का क्या है कि यानी तुम अपनी तौरात में ये अहकामात पाते हो, तुम तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ पाते हो, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो उन आयात का, तो लिमा तकफुरूना, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयात का? और जैसे कि हम सूरह बकरा में देख चुके, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं, और अपने बेटे को पहचानने में कोई इंसान को गलती नहीं लगती, फिर भी नहीं मानते थे। डिटाई, जिद, हसद। अब जब देख हट धर्मी पे इंसान उतर आए ना, आप उसके सामने सूरज भी लाएंगे तो कहेगा नहीं सूरज नहीं, दिन नहीं। या अहलल किताब, लिमा तलबिसून अलहक बिलबातिल। अब देखिए उनको कितने कन्विंसिंग अंदाज में, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, व्हाई, क्यों तुम हक को बादल के साथ गड़बड़ कर देते हो? हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे है, ऐसे करके बात को करना कि दूसरा कंफ्यूज हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि हक क्या और बादल की। लोग इनसे पूछते थे क्या ये सच्चे रसूल नहीं है, तो कहते थे हाँ रसूल तो है मगर अरबों के लिए, ऐसे सबके लिए थोड़ा ही है, ताकि ये ना कहीं मान जाए, ये हमें छोड़ के तो उनकी तरफ ना चले जाए। लेकिन जो देखें जो सच्चा, जो जो अनबायस्ड होके देखने वाला हो ना, जो कि ये तासुबात को पीछे रख के देखने वाला हो, तो ऐसे लोग भी थे जैसे यहूद के बड़े आलिम थे अब्दुल्ला बिन सलाम, जो इस्लाम ले आए थे और वो मानते थे हमारी किताब में सारी बातें लिखी हैं। क्यों तुम इतना इसको गड़मट करते हो कि लोगों को समझ ना आए? तो असल मुजरिम जो थे ना वो बड़े थे, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला ने हर एक को अकल दी है, समझ दी है, वो देख सकता है। किसी की भी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए ऐसे ये वो गुमराही कर दे क्योंकि हमारे बड़े आलिम कह रहे हैं इसलिए हम भी वो ही मानेंगे। ठीक है उनका जुर्म बड़ा था, लेकिन इसकी वजह से बाकी सारे लोग बेगुनाह नहीं हो जाते, ऐसा नहीं कि उनकी पकड़ नहीं होगी।
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، پھر بھی تم چھپا جاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو چھپایا. تو یہ دونوں جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے اور عیسائی بھی جانتے تھے، اور تم جان بوجھ کے چھپاتے ہو حق کو. اور آج بھی بعض لوگوں کا یہی طریقہ ہے، حق کو چھپا جانا، ایسے بات کرنا کہ نہ کچھ سمجھ آئے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، حق ہے کہ باطل ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تاکہ لوگ کہیں ہمارے سے بھاگ ہی نہ جائیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں یہ حرام ہے، تو لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ہماری کلاس چھوڑ کے چلے جائیں، یا ہماری مجلس چھوڑ کے چلے جائیں، یا ہمارے فین ہیں اتنے یہ لوگ تو پھر ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمیں اتنا سنتے ہیں یہ لوگ. نہیں، جو حق ہے اس کو حق بیان کرنا چاہیے، جو باطل ہے اس کو باطل بتانا چاہیے، گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ طریقہ ان کا تھا، اہل کتاب کا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون